ओम ब्रह्म सत्य। विषय है आध्यात्मिक जीवन। हम जिस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, संसार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, इसको सांसारिक जीवन कहा जाता है। और ये जो सांसारिक जीवन है, इस जीवन का आधार है मन की इच्छाओं को पूर्ण करना। इसका एकमात्र उद्देश्य है सांसारिक जीवन का, मन के अंदर मेरी जो भी इच्छाएं हैं, जिसके द्वारा मुझको आशा होती है कि मुझको सुख मिलेगा, तो उस सुख की प्राप्ति के लिए मैं अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के वास्ते पुरुषार्थ करता हूं। ये सांसारिक जीवन। और इस बात को यदि बड़े सादे तरीके से समझना हो तो परिवार में किसी भी बालक के बचपन को देखें तो बड़ी आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी कि बालक आवश्यकताओं के लिए नहीं जीता। जिस वक्त जो इच्छा उसके मन में उठ जाए उसके लिए वो डिमांड करता है, उसके लिए वो रोता है, उसके लिए वो परेशान होता है। बस वो एक ही चीज जानता है कि उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। और माता पिता भी यही करते हैं, उसको चुप कराना है तो उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। अभी अबोध है इसलिए उसको उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ा होता है वो, तब वो ये समझने लगता है क्या ठीक है क्या गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बोध उसके अंदर आ जाता है। इसके बाद और थोड़ा आगे बढ़ता है और बड़ा होता है, फिर उसको भविष्य नजर आने लगता है। पहले तो माता पिता उसके बारे में सोचते हैं कि भविष्य का इसका जीवन सुखी हो जाए, इसका जीवन सफल हो जाए, उसके लिए इसको क्या एजुकेशन चाहिए, क्या सुविधाएं चाहिए, उसके बारे में वो सोचते हैं। कि वो बालक जब खुद बड़ा हो जाता है उसको अपना भविष्य खुद नजर आने लगता है कि मैं क्या करूं क्या पढ़ूं ताकि मेरा भविष्य सफल हो जाए। लेकिन बड़ा होने के बाद भी, समझदार होने के बाद भी, उचित अनुचित का ज्ञान होने के बाद भी, हम ये आम जीवन में देखते हैं सारे संसार में कि मनुष्य उचित छोड़कर अनुचित कर्म करना शुरू कर देता है, उचित आहार छोड़कर अनुचित आहार ग्रहण करना शुरू कर देता है, उचित व्यवहार छोड़कर अनुचित व्यवहार करना शुरू कर देता है। अर्थात पाप के रास्ते पर अग्रसर होकर भी वो अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की कोशिश करता है। इसीलिए संसार में ये संभव ही नहीं है कि मनुष्य चैन से जी सके। सांसारिक जीवन जीते हुए ये संभव ही नहीं है कि वो चैन का जीवन व्यतीत। भाग्य से किसी किसी मनुष्य को कभी मौका मिल जाता है, कहीं सही सत्संग श्रवण करने का मौका मिल जाता है, या किसी सत्पुरुष से उसकी भेंट हो जाती है, उसका संग उसको प्राप्त हो जाता है। उस वक्त एक मौका मिलता है उसको कि शास्त्र किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के लिए कह रहे हैं, किस प्रकार का जीवन व्यतीत करने में मेरा कल्याण है, ये वचन उसको शास्त्रों के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा सुनने को मिलते हैं, समझने को मिलते। वहां इन सारी बातों का निर्णय वो ठीक ठीक सुनता है, ठीक ठीक समझने की कोशिश करता है। अब देखिए सारा संसार इच्छाओं की पूर्ति को सुख का साधन समझ रहा है और जीवन की सफलता समझ रहा है। और हम सब जानते हैं कि जितना ज्यादा पैसा कमा लेंगे उतनी ही ज्यादा वस्तु खरीदने की सामर्थ्य आ जाएगी, उतनी ज्यादा से ज्यादा मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और मैं सुखी हो जाऊंगा। यही लक्ष्य मैं अपने बारे में बनाता हूं, यही लक्ष्य मैं अपने बच्चों के बारे में बनाता हूं और यही मैं समाज के बारे में भी सोचता हूं। परंतु जब शास्त्र का निर्णय देखें तो महाभारत में आता है, ना जातु कामा कामा नाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्तते, भूय एव अभिवर्तते। अर्थात कहते कामनाएं या इच्छाएं उपभोग से शांत नहीं होती। क्या होता है फिर? वो कहते हैं जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि और तेज हो जाती है, उसी प्रकार ही मनुष्य की इच्छाएं या उसकी वासना और तीव्र हो जाती है। मैं पुरुषार्थ करके अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूं, लेकिन गारंटी नहीं है पूरी होगी या नहीं होगी। लेकिन एक और नुकसान मेरा होता है कि एक इच्छा वो कई इच्छाओं में को नई इच्छाओं को जन्म देती है। तो पहले तो एक मुसीबत थी, अब मेरे लिए कई मुसीबतें उसने पैदा कर। इसीलिए देखा होगा आपने पूरे संसार का कितना विकास हो रहा है, इच्छा पूर्ति के कितने अधिक साधन आज पैदा हो गए। लेकिन किसी भी सर्विस क्लास व्यक्ति से पूछो जिसको सर्विस करनी पड़ती है, चाहे वो दुकान पर सर्विस करे, चाहे वो बैंक में सर्विस करे या अन्य कहीं सर्विस करे, वो कह रहा है आजकल तो मुसीबत आ गई है, बॉस छोड़ता ही नहीं। कहता है सुबह 8 बजे आ जाओ और रात के 10 बजे तक भी जाने के लिए मत, काम करते ही रहो, उसके पर्सनल जीवन की उसका ध्यान ही नहीं है, केवल उसका काम की ओर ध्यान। क्यों काम की ओर ध्यान है? क्योंकि उसके मालिक की वासना बहुत बड़ी हुई है। कितना भी एम्प्लॉई से काम ले ले वो उसकी वासना पूरी नहीं है। तो इस वासना के वशीभूत होकर वो अपनी वासना से वो पाप कर रहा है, सामने का जो मनुष्य है उसका शोषण कर रहा है। इतना काम लेकर भी उसके काम के अनुसार उसको पैसे देने को तैयार नहीं, तो मनुष्य ही मनुष्य का शोषण कर रहा है, मनुष्य ही दूसरे मनुष्य के लिए राक्षस बन गया। अरे वो भूल जाता है इसके भी तो बीवी बच्चे हैं, इसका भी तो परिवार है, उनके लिए भी तो टाइम चाहिए इसको। तो ये जो वासना है, ये जो इच्छा का मार्ग है, ये जो संसारिक मार्ग है, ये हमको इंसान से राक्षस बना देता है। इसीलिए जैसे जैसे विकास हो रहा है संसार में मनुष्यों का, वो वासना का विकास हो रहा है। वासना का जहां विकास होता है वहां मनुष्य का पतन होता है। इसीलिए सारा का सारा सांसारिक विकास मनुष्य को घोर पतन की ओर ले जा रहा है, घोर स्वार्थ की ओर ले जा रहा है। इसलिए माँ जी कहते थे प्रेमी जब रजोगुण बहुत बढ़ जाता है, अर्थात भोगविलास बहुत बढ़ जाता है, तो फिर ये तमोगुण को जन्म देता दे देता है और ये जीव आपस में ही स्वार्थ की खातिर कट कट के मरने लगे। वही हो रहा है। तो ये दुर्दशा चाहे सारे संसार को देखते आप इस निर्णय पर पहुंच जाओ, चाहे अपने एक फैमिली को देख के पहुंच जाओ इस निर्णय पर, ये दुर्दशा हम सबकी हो रही है और आगे भी होने वाली, इससे बच नहीं सकता कोई। इसलिए सतपुरुष की वाणी, सतपुरुष की वाणी जब आती है तो वो इस बात का निर्णय कर जाती है। लेकिन महाजी की वाणी कह रही है जेती संपत पावे उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहता हमेशा। ये वाणी निर्णय कर रही, जेती संपत पावे उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखी आ रहे हैं, ये मेरी कंडीशन होती है। ये फाइनेंशियल डेवलपमेंट करके, भोगों का विकास करके ये मेरी आंतरिक दशा होती है। क्योंकि जितनी संपत्ति बढ़ेगी, जितना पैसा बढ़ेगा, तू लंबे लंबे लक्ष्य बनाएगा भोगने के लिए, और फिर तेरी मानसिक बेचैनी बढ़ जाएगी, तेरे मन में विकार बढ़ जाएंगे, उन विकारों की जलन तुझे कैसे तड़ पाएगी, जब फंसे उस चक्र में तब तुझको पता लगे। आगे कहते हैं जी, जो देखा सो दुखिया किससे करूं विचार। देखो वाणी क्या कह रही है, जो देखा सो दुखिया किससे करूं विचार, त्रिशला लागी अग्नि लोए कुल संसार। कौन सी आग जला रही है भाई तुझको? ये तृष्णा की आग जला रही है। इसी का नाम वासना है, इसी का नाम इच्छा है। इच्छाओं की प्यास, मेरी ये मनोकामना पूरी नहीं, ये मेरी ये मनोकामना पूरी नहीं। तो इसलिए चाहे हम 33 करोड़ देवी देवता बना लें, लेकिन देवी देवता हमारे मतलब के लिए, जैसा सुन रहे थे हम, एक ही उद्देश्य की पूर्ति करते हैं, जो हमने आशा कर रखी है कि मेरी मनोकामना को पूर्ण कर दे। अरे मूर्ख, तेरी मनोकामना यदि देवी देवता पूर्ण कर देंगे तो तू महाशैतान हो जाएगा, महाराक्षस हो जाएगा, ये तेरी दुर्गति होने वाली है यदि देवी देवता ने तेरी मनोकामना पूर्ण कर दी, क्योंकि तेरी वासना बढ़ेगी। कि वेद व्यास से ये बात गलत लिख नहीं सकते, क्योंकि वेद व्यास ने लिखा है कि ना जातु कामा कामा नाम उपभोग निशान, कि कामनाओं के उपभोग से वो शांत नहीं होती, वो उसी प्रकार प्रदीप्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रज्वलित हो जाती है, जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि तीव्र हो जाती है। ये शास्त्रों का निर्णय है, जितनी जल्दी सीख ले उतनी जल्दी मेरा कल्याण है, जितना लेट करेंगे उतना ही अपनी ही तृष्णा की आग में, अपनी ही विकारों की आग में मैं जल बनकर खाक हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए किसी अमीर आदमी को देखकर, किसी के घर में बहुत साजो सामान देखकर कभी चिड़ो मत, यदि तुम्हारा दुश्मन है तो खुश हो जाओ, ये तो जल्दी मरेगा, ये तो जल्दी परेशान होगा, इसने अपनी परेशानी का सामान खुद तैयार कर लिया है, मुझे इससे जलने की क्या जरूरत पड़ी, मुझे इससे बदला लेने की क्या जरूरत है, ये तो खुद ही मरना है अपनी भोग बलात् की सामग्री। तो यदि किसी घर में सादगी नजर आए उसको देख के खुश होना चाहिए, क्योंकि वो जीव शांत चित्त होगा, भविष्य में उसके सुख की आशा है, वो इंसान से राक्षस नहीं बनेगा, वो इंसान से देवत्व की ओर अग्रसर होगा, उसका देवता वाला जीवन भविष्य में बनना ही बनना है, क्योंकि वो अलर्ट है, वो होश में है। इसलिए संतवाणी कह रही है कि दो हाथ हो नीचे घर में बाढ़ है दाम, घर में यदि पैसा आ ही जाए प्रारंभ भाग्यवश तो दोनों हाथों से लोगों के दुख दूर करने में उसको खर्च करो, भोग विलास में खर्च करने की तो परमिशन ही नहीं, फिर तो ज्यादा कमाई करने की कोशिश क्यों करते हो, क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, जो वक्त में आता प्रभु भजन के लिए तो उसको पैसा कमाने में खर्च कर रहा। इसलिए महाजन का प्रेमी, कमाई करने की तो परमिशन है लेकिन कितनी कमाई की जाए इस पर नजर होनी चाहिए, ये बात उन्हें सत्पुरुषों से सीखनी है कि कितनी कमाई की जाए। मैं बेतहाशा कमाई करता हूं, दूसरों को देख देख के, अरे इसका 1000 करोड़ का बिजनेस है, मैं भी कोई लक्ष्य निर्धारित कर रहा हूं, तो ज्यादा नहीं तो 500 करोड़ का बिजनेस, तो ये लिमिट तो मेरी होनी ही चाहिए, गया काम। तूने अंधे को देख के अंधी मंजिल तैयार कर ली, तेरा जीवन तो बर्बाद हो गया, अब कौन कुछ को बचाएगा, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए यदि जीवन जीने की कला सीखनी है, अपने इस कीमती जीवन को बचाना है, तो सत्पुरुषों का चोला पकड़ना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता है कि नहीं, तो सारी जिंदगी रोते रहना कुछ हाथ आने वाला नहीं। बेचैनी लेकर पैदा हुए हो, बेचैनी लेकर तुम जीवन जी रहे हो, और इसी बेचैनी को लेकर संसार से विदा हो। इसीलिए वाणी कह रही है कि 5 विकार महा दुखदायी जले सकल संसारा परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तारा। जितनी भी संसार की दौड़ है मनुष्य के मन के अंदर पांच विकार की वृद्धि करती है, पांच विकार की वृद्धि करती है। और वो हम सब जानते हैं कि पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। किसी भी एक विकार का एनालिसिस करके देख लो, विश्लेषण करके देख लो कि कितनी लंबी दौड़ है एक एक विकार का। मान लिया एक विकार लोभ है, जो हम आसानी से सब लोग जानते हैं। लोभ का मतलब होता है वस्तुओं का लालच, संपत्ति का लालच, पैसे का लालच, ये बढ़ता रहना चाहिए, इसको लोभ कहते हैं। तो समाज में ऐसे बड़े लोग मिल जाएंगे आजकल के वक्त में कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए जिनके पास है, लेकिन उनकी लोभ वृत्ति इतनी बढ़ी हुई है कि हम लोग जो पैसा बैंकों में जमा करते हैं, जो टैक्स का पैसा हमारा बैंकों में जमा होता है, उस पैसे को हमारी कमाई है, वो अपनी जान पहचान बढ़ाकर एम्प्लॉयज को लालच देकर या सरकार को लालच देकर हजारों लाखों करोड़ का कर्ज बैंक से ले लेते हैं और वो सारा पैसा मारकर बैठ जाते हैं। हजारों लाखों करोड़ का बैंक वाले हम भाई जानते हो कि एनपी का क्या हाल है, कि लाखों करोड़ रुपया बैंक उसको राइट ऑफ कर देते हैं, उसको बट्टे खाते में डाल देते हैं कि इसकी वसूली की आशा ही कोई नहीं। अरे भैया ये हजारों करोड़ रुपया कौन खा गया? ये वो खा गए जिनका हजारों लाखों करोड़ का टर्नओवर है हर साल का। ऐसे बड़े लोगों का लोभ कितना बढ़ गया कि उनको दिखाई नहीं पड़ रहा कि ये मेरा देश है, इसको मैं डुबो रहा हूं। बेहोश है वो, महापापी है, लेकिन हम तो उनको बड़ी सम्मान की नजर से देखते हैं। अरे ये तो हवाई जहाज इसके अपने पास है, अपने घर के हवाई जहाज है, हवाई जहाज में चलता है। विचार करने की बात है कि एक लोग, ये गरीब आदमी से पूछो भाई कितने पैसे चाहिए तुझे गुजारा करने के लिए, कहेगा बाबूजी 5000 मुझे दे दो मेरा गुजारा आराम से चल जाए। ये गरीब आदमी की कल्पना 5000 तक। पढ़े लिखे से पूछो भाई कितनी कमाई की है, कहेगा मुझे 50000 दे दो मेरा काम आराम से चल जाए। तो काम तो 5000 में भी चल सकता है और जीवन 50000 में भी चल सकता है, लेकिन आगे जब लोभ बढ़ता है तो ये 50 लाख में भी जीवन नहीं चलता है, फिर हजारों करोड़ रुपया चाहिए, फिर भी बेईमानी नहीं छूटती, बेईमानी और बढ़ा लेता है, जिसको लाखों करोड़ चाहिए। तो ये विकार आपको कहां ले जाते हैं इसको बारीक नजर से देखना सीख। सत्पुरुष ये दृष्टि मान देता रहेगा, इसलिए वो कह रहे हैं कि पांच विकार महादुखदायी, जले सकल संसारा परमारथ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तारा। इसका इलाज क्या है? जब तक तेरी परमार्थ आध्यात्मिक जीवन में तेरा विश्वास नहीं होगा, तब तक तुझको इस जलन से, इस रोने से, इस दुख से छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता, इसका कोई रास्ता नहीं। तो इसीलिए आपके सामने कोई दूसरी जीने की कला है ही नहीं, एक ही कला है कि उस प्रभु के विश्वासी बनो, या यूं कहें कि गुरु के विश्वासी बनो, ताकि शास्त्रों में वाणी में जो सिद्धांत प्रभु के प्रकट हुए, प्रभु का नाम है विधाता। विधाता क्यों कहते हैं? उसकी विधि है, उसका कानून है, उसको कानून कुदरत कहते हैं। तो सारी सृष्टि उसके कानून के अंतर्गत चल रही है, तू यदि उसके कानून के विरुद्ध चलता है तो तेरे दुख के दिन जरूर आएंगे, सुख के दिन तुझसे छीन लिए जाएंगे। ये कुदरत का कानून काम करता है, तुझको दंड देता है, तुझसे बच नहीं सकता। तो इसीलिए संसार में आया है तो पांच विकार में कमी करने के लिए आया है। तू संसारिक जीवन व्यतीत करके पांच विकार की वृद्धि करके जा रहा है, कौन सी कमाई कर रहा है? तो देखा देखी हम नकल करके भ्रम में पड़ जाते हैं, यदि हमने किसी सत्पुरुष को गुरु बनाया हो, उससे हमने वो जीने की कला सीखी हो, तब पता लगता है मैं कैसी कैसी गलतियां करता रहा, कैसा कैसा मैंने गलत कर्म किया है, कैसी कैसी गलत कमाई की है और कैसा कैसा मैंने उल्टा सीधा भोग विलास संसार में किया। इसीलिए बड़े होश में रहने की जरूरत है। तो वो जो जीवन है जिसकी बात कर रहे हैं कि परमार्थ प्रतीत बिन नहीं जीव पाए निस्तार, तो वो परमार्थ की प्रतीति तेरे अंदर पैदा हो, वो विश्वास उसके प्रति, प्रेम उसके प्रति, श्रद्धा तेरे अंदर पैदा हो, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार का जीवन मैंने जीना होता है और उसका मार्गदर्शन सत्पुरुष ही कर सकते हैं, मुझको क्या पता। तो केवल दो वचन संता विलास से गुरुदेव ने जो वचन लिखे हैं उसमें, वो मैं सामने, एक शुद्ध वैराग्य चैप्टर है उसके दो वचन पढ़ रहा हूं, वहां से मार्गदर्शन है किस प्रकार का जीवन मैंने जीना चाहिए। वचन 73 में लिखते हैं वो, इस भोगवाद की जड़ता से जागृत हो करके, इस भोगवाद की जड़ता से जागृत हो करके अपने तमाम विकारों से छुटकारा हासिल करने का यत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि शारीरिक भोग ही तमाम खेदों के, खेद कहते हैं दुख को, क्योंकि शारीरिक भोग ही तमाम खेदों के देने वाले हैं और मनुष्य जन्म की उच्चता यह ही है कि इस भोग क्रीड़ा के संग्राम से अधिक पवित्रता प्राप्त की जाए। अब ये पवित्रता प्राप्त इस भोगों से कैसे होती है उसका प्रोग्राम बता रहे हैं, यानी आहार व्यवहार आचार और संगत की अधिक से अधिक पवित्रता धारण की जाए। अब उसकी डिटेल्स बता रहे हैं, तमाम मनुष्यात से, मनुष्यात कहते हैं नशीली चीजों, तमाम मनुष्यात से मांस आदि से परहेज रखना आहार की शुद्धि है, अपनी हक की कमाई में संतोषवान रहना, अपनी हक की कमाई में संतोषवान रहना व्यवहार की शुद्धि है, अपने वचन और कर्म को सत के आधार पर कायम करना यह आचार की शुद्धि है, नित ही श्रेष्ठ आचारी और सतग्रही पुरुषों की संगत करनी ये संगत की पवित्रता है, ऐसी नित की पवित्रता जब प्राप्त होती है तब बुद्धि परम आसक्ति से जागृत होकर के सतमार्ग कल्याण स्वरूप में निश्चल होती है, प्रथम जीवन उन्नति का साधन सार यही। एक वचन में उन्होंने प्रोग्राम दिया, काहे का प्रोग्राम दिया कि प्रथम जीवन उन्नति का साधन सार यही। तो जिस जीवन उन्नति के मार्ग पे तुम्हें चलना है उसकी ये फंडामेंटल तैयारी है, उसकी ये प्रारंभिक तैयारी है। तो प्रारंभिक तैयारी में वो चार चीजें कह रहे हैं, क्या कि आहार की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, आचरण अर्थात आचार की शुद्धि और संगत की शुद्धि। तो आहार की शुद्धि कोई लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं दिया महाराज जी, उन्होंने यही कहा तू इस नशीली चीजों से अर्थात मनुष्य से इसे परहेज कर। कोई गुटखे खाता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, कोई भंग खाता है, कोई मांस खाता है, तो मनुष्य से और मांस से परहेज रखना। कोई अंडे खाता है, याद रखिए मैं कहता हूं कि प्रोटीन बहुत होते हैं अंडे में, इतने प्रोटीन मुझे कहीं से नहीं मिलते, इसलिए अंडा खाने में क्या हर्ज, हर्ज तो है। संसार के जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जिस प्रकार मनुष्य में तीन गुण हैं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, उसी प्रकार संपूर्ण प्रकृति में तीन गुण है, इसलिए प्रकृति की वस्तुओं में भी तीन गुण है। तो जो खाद्य पदार्थ मैं सेवन कर रहा हूं, जिसको मांस अंडा कह रहा हूं, उसमें तमोगुण है, ये तमोगुण ही आहार है, तो मेरी बुद्धि तमोगुण की तरफ, मेरा मन तमोगुण की तरफ अग्रसर हो जाए, इसीलिए क्योंकि मैंने सतोगुण की तरफ वृद्धि, सतोगुण ही मैंने बनना है, सत की कमाई करनी है, इसलिए मेरा आहार उसके अनुकूल ही होना चाहिए। इसलिए मुझसे कहा जाता है कि मैं वेजिटेरियन डाइट शाकाहारी भोजन ग्रहण करूं, दूध दही का घी का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन वो भी सीमित मात्रा में वक्त के अनुसार। और इतना ही नहीं, वो अगली बात कर रहे हैं कि शुद्ध व्यवहार। शुद्ध व्यवहार का मतलब मैं जो कमाई करता हूं अपनी जीविका चलाने के लिए या अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए, वो जो कमाई करता हूं वो शुद्ध तरीके से होनी चाहिए, बेईमानी करके नहीं। शुद्ध तरीके से कमाई की हुई, इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी हक की कमाई में संतोषवान रहना व्यवहार की शुद्धि है। यह प्रोग्राम कौन दे रहा है? यह गुरु दे रहा है। किसके लिए दे रहा है? शिष्य के लिए दे रहा है। तो जिसने सत्पुरुष पर विश्वास किया है उसको वो सत्पुरुष सही मार्ग पर ले जाने का प्रोग्राम बता रहा है। वो कह रहा है कि तूने ईश्वर पर विश्वास करना है कि वो तेरा कारण करता है, सुख दुख उसकी आज्ञा से तुझको मिलेंगे, उसके हुक्म से तुझको मिलने वाले, संसार की ताकत नहीं है तुझको सुख दुख दे सके, इसलिए उस पर विश्वास रखे, तूने ईमानदारी से कमाई करनी है और उसमें जो कुछ भी कमाई हो जाए उसमें संतोष मान रहना है। ये नहीं बेईमानी करता था मेरी 1,00,000 रुपए महीने की इनकम हो जाती, मैं ईमानदारी पे आ गया तो मेरी कमाई 25,000 रुपए महीना रह गई। अरे घबरा मत, 1,00,000 की कमाई में तो डूब जाता, 25,000 की कमाई में तो तर जाएगा। अरे विचार करके तो दे, तेरे सारे ऐब छूट जाएंगे, तेरा फैशन छूट जाएगा। तो लोगों से झूठ बोलता था कमाई करने, वो तेरा झूठ छूट जाएगा, तेरा सादा जीवन हो जाएगा। अरे तेरा तो देवता वाला जीवन हो जाएगा, तो संतोष तो रख, सुख और दुख ये ईश्वर से हुक्म, ईश्वर के हुक्म से तेरे जीवन में आएंगे, उनको कोई पैसे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये ईश्वर के हुक्म पर निर्भर करते। तू 1,000 में भी उतने ही सुख भोग सकता है जितना कोई 1,00,00,000 में सुख भोगता है। ये बात सत्य है, 1,000 में मनुष्य उतने ही सुख भोग सकता है जितना कोई व्यक्ति 1,00,00,000 में भोगता है, क्योंकि ये क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करते हैं, ये मन की हालत पर निर्भर करते हैं कि मेरे मन की सोच कैसी है। तो जब मैं ईश्वर मार्ग पर चलता हूं तो मेरे मन की सोच ही बदल जाती है, इसलिए मैं 1,000 में उतना ही सुख भोग लेता हूं जितना मेरा साथी 1,00,00,000 में भोगता है। वो तो 1,00,00,000 का सुख भोग कर बर्बाद हो जाता है और मैं ईश्वर के मार्ग पर चल पाता हूं, मेरा तो कल्याण हो जाता है। तो कम कमाई में घबराओ मत, ये देखो मैं गुरु आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तो व्यवहार की शब्दी बड़ी जरूरी है, क्योंकि गलत पैसे का खरीदा हुआ जो अन्न है उसमें भी तमो गुण का इफेक्ट आ जाता है, वो आहार आपके मन में पाप वृत्ति पैदा करता है, चालाकी मक्कारी पैदा करता है। इसलिए जो शुद्ध कमाई का आहार है वही बच्चों को खिलाओ, कोई खुद खाने की, इसलिए व्यवहार की शुद्धि लाजमी है, इसका जुड़ाव आहार के साथ है। तीसरी बात कहते हैं कि अपने वचन और कर्म को सत्य आधार पर कायम करना, वचन और कर्म को सत्य के आधार पर कायम, अर्थात मैंने ईश्वर को जानने के मार्ग पर आगे बढ़ना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। अब मैंने कैसा लोगों के साथ व्यवहार करना है, कैसा लोगों के साथ मैंने कर्म करना है, कैसा उनके साथ मैंने वचन विलास करना है, ये उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर करना है। देखो मैं अभी क्या करता हूं, जो मित्र बनाता हूं अरे मुसीबत में काम आएगा, पड़ोसी बनाता हूं अरे मुसीबत में काम आएगा, परिवार बढ़ाता हूं अरे मुसीबत में काम आएंगे, बुढ़ापे में मेरा लालन पालन करेंगे, हर मामले में मेरा साथ आगे होता है, ये मेरे काम आएंगे। लेकिन जो सत पर आधारित जिसका जीवन होता है वो ये सोचता है कि मैं इनके क्या काम आ सकता हूं, प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया है तो मैं इनके क्या काम आ सकता हूं, बस ये दृष्टिकोण उसका रहता है। अब विचार करके देखो, या खुद ही विचार करके देखो, जिसके जीने का ये दृष्टिकोण होगा, जिसका अन्य लोगों के साथ व्यवहार का ये दृष्टिकोण होगा कि मैं इनके दुख में क्या काम आ सकता हूं, इनकी मुसीबत में क्या काम आ सकता हूं, क्या दुनिया आपसे दूर भागेगी, दिल से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगी तो घाटा आपका नहीं होता, दुनिया रियल वे में आपसे प्रेम करती है, अंदर से दिल से चाहती है आप। लेकिन ये साथ रखते जब संबंध में आते हो तो वो जान जाते हैं ये बड़ा मतलबी है, अपने मतलब के लिए बात कर रहा है, जब मतलब नहीं होगा तो बात भी नहीं करेगा, इसलिए टेस्ट में हम फेल हो जाते हैं। इसी को करें कि अपने वचन और कर्म को सत्य के आधार पर कायम करना, ये आचार की शुद्धि है। नित ही श्रेष्ठ आचारी और सतग्रही पुरुषों की संगत करनी, ये संगत की पवित्रता है। चौथी चीज करें कि नित ही श्रेष्ठ आचारी और सतग्रही पुरुषों की संगत करना। श्रेष्ठ आचरण का एक ही पैरामीटर महाराज जी ने अभी अभी बताया, क्या? अपने वचन और कर्म को सत्य के आधार पर कायम करना, ये आचार की शुद्धि है। तो जिस व्यक्ति का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं है, जो ईश्वर के मार्ग पर पूरी गंभीरता से नहीं चल रहा है, उसका संग कहीं ना कहीं आपको भोगविलास की ओर, भोगवास की ओर ले जाए। आपको भोगवास से वही बचा सकता है जो ईश्वर के मार्ग पर गंभीरता से चल रहा है, जिसको शास्त्रों की समझ है, वही संसार की बारीकियों को समझता है। संसारी तो कॉन्स्टिट्यूशन की बारीकियों को समझ सकते हैं, लेकिन सतमार्ग की बारीकियों को नहीं समझते। तो इसीलिए संग उनका करो जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, जो शास्त्रों के मार्ग को समझते हैं, उनका संग करने की कोशिश करो, उसको सत्संगत कहते हैं। कहते हैं कि ऐसी नित्य की पवित्रता जब प्राप्त होती है, तब बुद्धि परम आसक्ति से जागृत होकर के सत मार्ग कल्याण स्वरूप में निश्चल होती है। ये चारों चीजें जिसकी दुरुस्त हो जाती हैं, वो व्यक्ति बड़े आराम से ईश्वर के मार्ग पर चलने में समर्थ हो जाता है। क्यों समर्थ हो जाता है? क्योंकि उसकी जो संसार के प्रति आसक्ति थी वो टूट जाती, संसार उसका फिर लक्ष्य नहीं रहता, लक्ष्य उसका ईश्वर था। अब जिसकी ये अवस्था हो गई, ये प्रारंभिक तैयारी है, अब उसके लिए दूसरा वचन आगे की बात कर रहा है, वो फिर उसको क्या करना चाहिए। वचन 76 में क्या करें, जीवन यात्रा में समय की अधिक पाबंदी को धारण करके, जीवन यात्रा में समय की अधिक पाबंदी को धारण करके हर एक कल्याणी कर्म, कल्याणकारी कर्म समय पर करना चाहिए। अब वो कल्याणकारी कर्म कौन सा है? यानी स्वार्थ कामों से समय को निकाल करके परमार्थ संबंधी कर्मों में दृढ़ होना चाहिए। अब वो परमार्थ संबंधी कर्म कौन से हैं? वो कहते हैं सिमरण, सेवा, सत्संग आदि महासाधनों में अधिक से अधिक प्रेम और अधिक समय देना चाहिए, जिससे जल्दी ही मानसिक दोषों का अभाव होवे और बुद्धि सत परायणता में पूर्ण रूप से निश्चल। तो देखिए, सिमरण, सेवा और सत्संग, इन तीन चीजों के लिए फिर आपको वक्त चाहिए। जिसका दैनिक जीवन शुद्ध हो गया, जिसका लक्ष्य ईश्वर बन गया, उसका फिर तीन कामों में वक्त बीतना चाहिए, सिमरण, सेवा और सत्संग। तो वक्त लाओगे कहां से? तो जिस स्वार्थ में आपने ये स्वार्थ को बढ़ा करके, अज्ञान का में स्वार्थ को बढ़ा करके उस समय आपने बर्बाद किया है, उस बर्बादी से समय को निकालो, उसको सीमा में लाओ, उसको लिमिट में लाओ। आवश्यकता पूर्ति के लिए आर्थिक कमाई करो, भोग विलास पूर्ति के लिए नहीं। तब आपके पास समय बचेगा, उसको सिमरन, सेवा और सत्संग में खर्च करो, शास्त्र के स्वाध्याय में खर्च करो। इसीलिए वाणी करिए, सत सिमरन सत्संग परीति नित धारे पर उपकारा, मंगत मार्ग धर्म का सोदे तब उतरे भवनी। तीन चीजें हैं, सत सिमरन, सत्संग परीति, नित धारे पर उपकारा, यह है धर्म का मार्ग। मंगत मार्ग धर्म का सोदे तब उतरे भवनी। इस भोग के सागर से, इस वैतरणी नदी से तू पार हो जाएगा, इस वासना के सागर से तू मुक्त हो जाएगा, इसमें डूबने से बच जाएगा। तो वो जो ये प्रभु है वो अंतर्यामी है, लेकिन उस अंतर्यामी प्रभु से तेरी दूरी बहुत अधिक बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि तेरे मन के अंदर वासना भर गई है, इसे प्रभु का प्रेम गायब हो गया, इसकी तो तू आवश्यकता महसूस ही नहीं करता। यदि कभी आवश्यकता महसूस होती है तो इस वास्ते होती है कि मेरे भोगों में जो बाधा आ रही है वो प्रभु का नाम लेने से किसी प्रकार से दूर हो जाए, प्रभु की पूजा करके वो दूर हो जाए। उसको होश ही नहीं है कि प्रभु से मांगना क्या चाहिए, मैं मांग क्या। इसलिए जब पंचवटी में भगवान राम जब लक्ष्मण के साथ बैठे थे वन के अंदर, तो लक्ष्मण पूछते हैं राम से, हे राम आपका कहाँ निवास होता है, आप कहाँ निवास करते, किसके पास रहते हैं? तो भगवान राम कहते हैं, काम आदि मददम्भ न जाके तात निरंतर बसो मैं ताके। जिसके अंदर ये काम आदि अर्थात जो पांच प्रकार की बात हो रही है, जिसके अंदर ये निवास नहीं करते वहां मैं निरंतर निवास करता हूं। इस मन में एक ही चीज बस सकती है, या संसार बसेगा या करतार बसेगा। जिसके मन में करतार बस गया है उसको ईश्वर के अलावा याद कुछ आएगा ही नहीं, कुछ याद नहीं आएगा। तो मन मेरा ही है, कितना दुखी करता है मुझको, इसमें आग भर लिए मैंने। वो कौन सी आग? कृष्णा की आग, वासना का सागर इसमें लहरें मारता है, ये मेरे लिए मुसीबत है। और प्रभु अंदर ही बैठे हुए हैं, इसलिए यदि मैं चाहूं उनसे प्रार्थना कर दूं वो मुझको बचा सकते हैं, तो उससे बचने का प्रोग्राम ये प्रभु ने दे दिया उन्हें। तो मैंने अपने जीवन की ऐसी तैयारी करनी है, दैनिक जीवन इस प्रकार से व्यतीत करना है कि मेरे पास वक्त स्वार्थ से बचे, स्वार्थ के कामों से मुक्त होकर मैं प्रभु के कामों में वक्त खर्च करने में सफल हो जाऊं। तो इसीलिए वो समय बचाकर मैंने काय में खर्च करना है, निष्काम सेवा में, शास्त्र को स्वाध्याय सत्संग सेवा में, और प्रभु का सिमरन करना। तो ये जिसके जीवन में तीन बातें आएंगी उसका मन एक दिन एक दिन जरूर निष्काम हो जाएगा। और जिस मन में निष्कामता होती है वहां राम निवास करते हैं, वहां माया निवास नहीं करते, वहां मायापति निवास करते। इसलिए जिस प्रभु के आधार पर यह संसार चक्र चल रहा है, ये सारी सृष्टि की लीला चल रही है, जो मेरे इस शरीर को जीवित रखे हुए, जो मेरे प्रारंभ के अनुसार इस शरीर को घुमा रहा है, मेरे जीवन में सुख और दुख भेज रहा है, उस प्रभु पर मेरा जब विश्वास आता है, उसकी दिल से उसको जानने के लिए मैं उससे प्रार्थना करता हूं, तो वो प्रभु मुझ पर कृपा करते हैं, उनकी कृपा के वशीभूत होकर फिर मैं अंतर्यामी परमेश्वर का अनुभव करता हूं, उनका दर्शन करता हूं, फिर उनके साथ एक होकर समाधि में प्रवेश करता हूं, जहां इस कितना मोह था, गहरा माया जाल था इस देह में, इस प्रिय देह को मैं भूल जाता, इसके रहते रहते मैं इसको भूल जाता। और समाधि जब मेरी टूटती है तो उसका जो सुख था, उसका जो आनंद था, और इस संसार की जो जलन है, उस आनंद को छोड़कर जब संसार की जलन में मैं जागृत होता हूं तब मैं रोता हूं। इसलिए वाणी कह रही है, योगी रोए समाज को छोड़े प्रभु का हुक्म विसार, पंडित रोए वेद का वक्ता पावत ना तुसार। जिसने अध्यात्म विद्या की थ्योरी तो पढ़ी है लेकिन अप्लाई नहीं किया वो पंडित भी रोता है। चारों वेदों का ज्ञाता है, लोगों को पढ़ाता है लेकिन रोता है, क्योंकि मन में वासना भरी हुई है, ईश्वर प्रेम नहीं। लेकिन जिसने समाधि प्राप्त कर ली ईश्वर साथ, ईश्वर के साथ प्रेम करके, वो इसलिए रोता है कि प्रभु में आनंद का सागर है, संसार में तो तृष्णा के अलावा जलन के अलावा है ही कुछ नहीं, प्रभु इस संसार में तूने मेरे मन को वापस क्यों भेज दिया, तू मेरे मन को अपने ही पास, तो बाहर आना ही। तो विचार करिए मेरी, इसको सदगति कहते हैं, जब प्रभु में तेरा प्रेम पैदा होता है, प्रभु में तेरी एकाग्रता पैदा होती है, और प्रभु में तेरा आनंद पैदा होता है, तो ये सदगति है। जब तेरा भोगों में मन लगता है, संसार में मन लगता है, मन में तब कृष्णा की आग तुझे जलाती है, ये तेरी दुर्गति, इसलिए ये नरक कुंड की ओर तू जा रहा है, जो ईश्वर का स्मरण कर रहा है, निष्काम सेवा कर रहा है, सत्संग का श्रवण कर रहा है, शास्त्रों का स्वाध्याय कर रहा है, उसकी सदगति होती है, वो निरंतर अमृत की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए हम आध्यात्मिक जीवन को अपनाएं, संसारिक जीवन से मुक्ति हासिल करने की कोशिश करें। ओम।